ये आकाशवाणी है, अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंबेडकर जयंती पर कल हरियाणा जाएंगे। वे सवेरे 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी हवाई यात्रा सुरक्षित, सस्ती और सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 800 मेगावाट क्षमता वाले दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी यमुनानगर में मुकरबपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे यमुनानगर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 1070 करोड़ रुपए की लागत से बने 14 किलोमीटर से अधिक लंबे रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इससे दिल्ली नारनौल के बीच की दूरी 1 घंटे कम हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 माह के भीतर फैसला करना चाहिए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इसमें विलंब होने के वैध कारण संबंधित राज्य के साथ साझा करने चाहिए। पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के 10 लंबित विधेयकों पर मंजूरी न देने के फैसले को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को भी राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने में 3 महीने से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कल दोपहर जाफराबाद के एक घर से पिता और पुत्र के शव बरामद किए। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई। धोलियान में कल दोपहर फिर से हिंसा भड़क उठी, जिसमें 2 अन्य लोग घायल हो गए। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। इस मामले पर सुनवाई के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कल पंजाब के जालंधर में वज्र कोर की तैयारियों का निरीक्षण किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने उन्हें पश्चिमी मोर्चे पर सुरक्षा स्थिति की जानकारी दी। थल सेना प्रमुख इन दिनों पश्चिमी कमान के दौरे पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत किया जा रहा है। अमरीका ने देश में आयातित स्मार्टफोन और कंप्यूटरों को नवीनतम शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की सूचना के अनुसार ये उत्पाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए 10% वैश्विक शुल्क और चीन पर लगाए गए 145% जवाबी शुल्क से अलग रखे गए हैं। ये छूट 5 अप्रैल तक अमरीका में प्रवेश कर चुके या गोदामों से निकाले जा चुके उत्पादों पर लागू होगी। अमेरिका ने कहा है कि ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान के साथ हुई पहले दौर की वार्ता बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक रही। राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराग्ची के साथ बातचीत की। वार्ता की मेजबानी ओमान के विदेश मंत्री सईद बदर ने की थी। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ही स्वीकार की जाएंगी। चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे। पंजाब में आज बैसाखी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। बैसाखी से ही किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैसाखी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। कोलकाता में कल हुए फाइनल में मोहन बगान ने बेंगलुरु को 2-1 से हराया। अमेरिका के फ्लोरिडा में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण के कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेन्नम की जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारतीय जोड़ी ने कल रात एक रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपेई के हुआंग जाऊ और चीन ची लून की जोड़ी को हराकर खिताब जीता। बिहार के राजगीर में 1 जून से 10 जून तक महिला कबड्डी विश्व कप खेला जाएगा। इस विश्व कप में 14 टीमें भाग ले रही हैं। बिहार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।